Market Mantra. Welcome to Market Mantra, a program in which we give you a complete update on the economic news of the day. I'm Arjun Chaudhary and with me is my co-anchor Amit Goyal.
Namaskar, Market Mantra कार्यक्रम में आपका स्वागत है. आज के अंक में देश विदेश की आर्थिक गतिविधियों के साथ साथ शेयर बाजार की हलचल पर एक नजर डालेंगे और चर्चा करेंगे. चर्चा के लिए आज हमारे स्टूडियो में आमंत्रित हैं वरिष्ठ आर्थिक विश्लेषक के डॉक्टर एसपी शर्मा. डॉक्टर शर्मा, कार्यक्रम में आपका स्वागत है.
जी शुक्रिया, थैंक यू.
सबसे पहले एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर, तो अंग्रेजी में हेडलाइन के साथ अर्जुन.
बेंचमार्क इंडस्ट्रीज फेल टू होल्ड रिकॉर्ड हाई, एंड्स इन द रेड विद सेंसेक्स डाउन बाय 210 पॉइंट्स व्हाइल निफ्टी लूजर्स बाय 0.14%. India's core sector registers growth by 6.3% in May. Power, coal, steel, natural gas and refineries show positive growth. And at the multi-commodity exchange, gold and silver prices exhibit positive signs.
आर्थिक सुर्खियों में, घरेलू शेयर सूचकांक रिकॉर्ड स्तर पर पहुंचने के बाद फैसले. सेंसेक्स में 210 अंक की गिरावट. निफ्टी में 0.1% का मामूली नुकसान. मई के दौरान देश के 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र की विकास दर 6.3% दर्ज. ऊर्जा, कोयला, स्टील, प्राकृतिक गैस और रिफाइनरी उत्पाद में सकारात्मक बढ़त. और मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने और चांदी की कीमतों में मजबूती का दौर. घरेलू शेयर बाजारों में आज शुरुआती तेजी के बाद मुनाफा वसूली नजर आई. बंबई शेयर बाजार का सेंसेक्स कारोबार के दौरान नए रिकॉर्ड स्तर 79,672 के स्तर को छूने के बाद कारोबार की समाप्ति पर 0.3% की गिरावट से 210 अंक गिरकर 79,033 पर बंद हुआ. नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी सत्र के दौरान नए रिकॉर्ड स्तर 24,174 पर पहुंचने के बाद मुनाफा वसूली से कारोबार के अंत में 0.1% की मामूली गिरावट से 34 अंक गिरकर 24,011 के स्तर पर बंद हुआ. हालांकि बीएसई मिड कैप सूचकांक 0.4% और स्मॉल कैप सूचकांक 0.6% की बढ़त बनाने में कामयाब रहा.
India's equity indices extended their rally to fresh all-time highs during the session today. However, selling at higher levels erased all the day's gains to the end, with losses snapping their four-day winning run. At close, the 30-share pack hit a record fresh high of 79,672 points, but eventually ended with a loss of 210 points or 0.27% to close at 79,033. Nifty 50 hit a fresh record high of 24,174 during the session, but failed to hold the altitude and ended 34 points or 0.14% lower at 24,011. However, in the broader market at the Bombay Stock Exchange, the mid-cap and the small-cap segments ended with gains. The mid-cap index rose at 0.41% and the small-cap index ended 0.56% higher. In the Sensex pack of 30 companies, 10 registered gains. The top three gainers today were Reliance, which went up by 2.31%, Tata Motors went up by 1.86%, and Asian Paints up by 1.31%. Conversely, the three major laggards were IndusInd Bank, which fell by 2.61%, Axis Bank down by 2.05%, and Bharti Airtel, which fell by 1.8%. In sectoral indices at the Bombay Stock Exchange, 12 out of 20 logged gains. The top three gainers were energy, which went up by 1.64%, oil and gas went up by 1.52%, then metal was up by 0.70%, whereas BankEx fell by 1.04%, telecom by 0.65%, and financial services went down by 0.52% were the three major laggards. The overall market breadth was positive. Out of 4,012 companies, shares of 2,180 companies advanced, 1,725 companies declined and 107 companies remain unchanged.
अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में डॉलर के मुकाबले रुपया आज मामूली बढ़त से 83.38 रूपये प्रति डॉलर के स्तर पर दर्ज हुआ. डॉलर इंडेक्स भी मामूली बढ़त से 105.9 के स्तर पर रहा. डॉक्टर शर्मा, शेयर बाजार में आज की दिशा, नित नए रिकॉर्ड बनाने के बाद, क्या ये छोटा सा जो गिरावट है, क्या ये गिरावट मानी जाएगी या कहीं ना कहीं निवेशकों ने अपनी पोजीशंस हल्की करने के लिए ये सब किया?
देखिए ये गिरावट नहीं है, ये एक हल्की मुनाफा वसूली जिसको हम कहेंगे, क्योंकि वीकेंड भी था तो मार्केट्स ऑल टाइम हाई पे हैं, तो लोग अपना प्रॉफिट बुक भी थोड़ा बहुत करना चाहते हैं, थोड़ी सी हेयर कट रहता है। लेकिन मार्केट्स में जिस तरीके से एक मोमेंटम बना है वापस, जो एक रैली शुरू हुई है वो एक बहुत ही स्ट्रांग रैली है। जैसे हमने पहले देखा कि लगभग कोई 22,000 और 23,000 के स्तर में निफ्टी लगभग कोई 5 महीने उसमें कंसोलिडेट किया। आपने देखा होगा कि कई बार 23,000 के आसपास आके फिर 22,200, उसके बाद 500, 600 ऐसे करके निफ्टी ने बड़े अच्छे से कंसोलिडेट किया लगभग कोई 5 महीने के अंतराल में। और दूसरा, जब इलेक्शन रिजल्ट्स थे उस टाइम पे मार्केट्स बहुत वॉलेटाइल रही, वो भी एक वॉलेटिलिटी का और एक जो कंसोलिडेशन था उसका एक बहुत स्ट्रांग जो कॉम्बिनेशन वहां पे बना। उसके बाद मार्केट्स ने अपनी पोजीशन ली के आगे जो फंडामेंटल्स हैं, जो एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है और जो हमारा ग्रोथ मोमेंटम है, जो अभी हम 8% से ऊपर ग्रो कर रहे हैं, जो एक न्यू नॉर्मल बन गया है, जिसको मैं आई वुड से 8% अभी इंडिया के लिए एक न्यू नॉर्मल है कि हम डिस्पाइट दी सो मेनी हेडविंड्स, जो जितनी भी प्रॉब्लम्स हो रही हैं उसके बावजूद भी हम 8% के आसपास ग्रो करना सीख गए हैं कि कैसे ग्रो करना है, किस तरीके से, क्या डायनामिक्स है। तो ओवरऑल मार्केट्स ने उस चीज को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली आगे रिफ्लेक्ट किया है कि हमारे पास बहुत मोमेंटम है, आगे बढ़ने के लिए हमारे पास बहुत ग्रोथ है। कंपनीज के अभी 4-5 चीजें क्या है जो मैं बताना चाहूंगा कि जो पॉजिटिव है इंडिया के लिए। इन्फ्लेशन सॉफ्ट हो रहा है, इन्फ्लेशन ट्रैजेक्टरी इज डिसेलरेटिंग, ग्रोथ हमारी हाई मोमेंटम पे है, वी आर द फास्टेस्ट मूविंग इकोनॉमी। और तीसरा जो है हमारा जो फंडामेंटल्स हैं, जिसमें आप कहिए कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हो गए या फिर कोर इंफ्रास्ट्रक्चर या फिर आईआईपी नंबर्स या फिर अदर मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स, दोज इंडिकेटर्स आर ऑल्सो स्ट्रांग। और चौथे नंबर पे जो हमारा प्रॉफिटेबिलिटी है, कॉरपोरेट का जो प्रॉफिटेबिलिटी है, जो बैलेंस शीट्स हैं वो बहुत स्ट्रांग है। हमारी जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके बैलेंस शीट्स काफी स्ट्रांग है। तो ये 4-5 जो पॉजिटिव इंडिकेटर्स हैं वो मार्केट को बहुत अच्छी सपोर्ट दे रहे हैं। खाली एक हमें जो चैलेंज है वो एक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, कि जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अगर थोड़ा गहराती हैं तो उसका मार्केट्स में वॉलीटिलिटी क्रिएट होती है कि कहीं जो है उससे कैपिटल आउटफ्लो भी होता है, क्योंकि पैनिक में जो सिचुएशन क्रिएट होती है देन पीपल स्टार्ट सेलिंग देयर पोजिशंस इन द मार्केट। तो कुल मिला के जो पॉजिटिव्स हैं वो बहुत ज्यादा हैं, नेगेटिव जो ग्लोबल एक फैक्टर है जिसको कोई हम रोक नहीं सकते, जो हमारे हाथ में नहीं है, वो हमें थोड़ी बहुत देर के बाद इम्पैक्ट जरूर करता है कि मार्केट्स में एक वॉलेटिलिटी की सिचुएशन आती है, एक पैनिक क्रिएट होता है जिससे कि काफी लोग जो है पैनिक में आके कई बार सेल भी करते हैं। तो उनको कई बार समझाया भी जाता है कि भाई फंडामेंटल स्ट्रांग है, आप इसमें बने रहिए, मार्केट्स वापस वही टर्न लेंगे और मार्केट्स अपने मोमेंटम में वापस आएंगे, ऐसा कई बार होता है।
आपने 4 चीजों का जिक्र किया, क्या इसके साथ 2 चीजों का और जिक्र करना भी यहां पर जरूरी होगा कि अभी कुछ ही दिनों बाद हम पूर्ण बजट देखेंगे, तो सरकार के स्थायित्व के बाद ये औद्योगिक जगत को एक बिल्कुल साफ तस्वीर भी है और साथ ही साथ भरोसा भी है कि जो नीतियां हैं वो बिल्कुल निर्बाध तरीके से आगे बढ़ती रहेंगी, जो सुधार की नीतियां हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर की आपने बात करी, ढांचागत सुविधाओं की जो है। और साथ ही साथ अगर हम कुछ ही दिनों बाद पहली तिमाही के कंपनी जगत के नतीजे भी देखना शुरू करेंगे
जी,
क्या ये दोनों चीजों से हमको बेहतर संकेत मिल रहे हैं जिसको बाजार परिलक्षित कर रहा है इस ऊंचाई पर पहुंचने के लिए?
जी बिल्कुल, ये भी फैक्टर्स हैं, क्योंकि मैंने जो ऑलरेडी चीजें हो रही हैं जो पॉजिटिव किट्टी में है वो मैंने मेंशन की, जो होने वाली चीजें हैं, जैसे बजट आने वाला है, बजट के ऊपर बहुत सारे लोगों की एक्सपेक्टेशंस हैं कि सरकार मिडिल क्लास के लिए कुछ करेगी, कुछ टैक्सेशन में रिलीफ शायद आएगा। और इसके अलावा जो आपने प्रॉफिटेबिलिटी की बात की, जो कॉरपोरेट रिजल्ट आएंगे वो उनके ऊपर भी मार्केट्स जो है आगे एक पॉजिटिव, क्योंकि मार्केट्स आर ऑलवेज फॉरवर्ड लुकिंग, मार्केट्स हमेशा आगे का देख के चलती हैं, तो उस हिसाब से जो फंडामेंटल्स हैं, जो पॉजिटिव्स हैं, वो बहुत ही स्ट्रांग है।
डॉक्टर शर्मा, जस्ट कमिंग बैक टू द इक्विटी मार्केट, आई नो दैट देयर इज अ लिंकेज बिटवीन द स्टॉक मार्केट एंड द रियल इकोनॉमी एंड सेंटिमेंट इज ड्रिवन बाय हाउ द स्टॉक मार्केट परफॉर्म्स, एंड टुडे द नेट बायर्स एंड वेरी एग्रेसिव बायर्स वर द डीआईआईज टू द ट्यून ऑफ 6,658 करोड़ रुपीज, वेर एज the net sellers were the FIIs very aggressively selling in the market. How do you see this volatility in the market, which actually went down, but there's a huge swing, I mean about 7-800 points in a day?
Yes, Arjun, this thing we have discussed so many times, and you always question that why the DIIs are coming forward to invest in the market and FII is not that much aggressive. That is true. Now our market is majorly driven by our domestic players, because they are relying on the market. They have full confidence in the market because they are believing on the India's fundamentals that we are going to become a Viksit Bharat by 2047 and growth will remain intact not only for years but for the decades. So that we have shown that we are growing more than 8% in the post-COVID years. Our growth is on an average is more than 8%, 9.1% in immediately after the COVID year, 21-22, then 7.2% 22-23, then 8.2% in 23-24. And for the current year, again, expectations are that we will grow at around 8%. 8% is now the new normal. So, on the basis of these fundamentals, on the basis of this positive and higher growth trajectory supported by the various economic fundamentals like the core infrastructure, IIP numbers, softening inflation trajectory and the investments, all these fundamentals are supporting these numbers at the higher level. So FIIs, because they have issues, they check the geopolitical developments and many vulnerabilities. All these things are in their mind. Actually, they sometimes book their profits. But market major support to the markets is coming from the domestic players. As the retail participation is increasing and DIIs are significantly relying on Indian market.
डॉक्टर शर्मा, आपने अभी जिक्र किया कि जो घरेलू संस्थागत निवेशक हैं वो बहुत बड़ी मात्रा में निवेश कर रहे हैं और शायद वो मार्केट की ड्राइविंग फोर्स साबित हो रहे हैं. दो मायने हैं इसके, या एक मन में एक विचार ऐसा भी है कि जो विदेशी संस्थागत निवेशक हैं अगर वो बाजार में बहुत प्रमुखता से नहीं भाग ले रहे तो क्या उनके मन में कोई शंका है भारतीय बाजारों के बारे में, एक. दूसरा, या घरेलू जो संस्थागत निवेशक हैं उनके पास लिक्विडिटी इतनी है और उनके पास निवेश के इतने मौके हैं जिसको कि, और बाजार के प्रति भरोसा जो आपने अभी भी कहा, कि ये दोनों चीजों में से कौन सी थ्योरी ज्यादा फिट हो रही है?
देखिए, जो आपका दूसरा पॉइंट जो आपने क्वेश्चन भी किया उसका आंसर भी दिया कि शायद उनके पास जो एफआईआईज हैं उनकी लिक्विडिटी काफी समय डिवाइडेड होती है, बिकॉज जब मार्केट्स हायर साइड पे होती हैं उनको जो रिटर्न्स हैं वो बड़े हॉट रिटर्न्स उनको चाहिए होते हैं. समटाइम्स दे कैप्चर द वॉलेटिलिटी, जब मार्केट्स एक टर्न लेती हैं किसी बेसिस पे, जब मार्केट डिसेलिरेट कर रही होती है, देन दे टुक देयर पोजिशन एंड सेल एट द हायर लेवल. तो एफआईआईज का एक अलग ही पैटर्न होता है इन्वेस्ट करने का, डीआईआई का अलग होता है. दे आर द ऑलवेज लॉन्ग टर्म फॉर डेकेडल बायर्स इन द मार्केट. एफआईआईज को एक मौका, मतलब जब भी उनको लगता है कि अभी मार्केट में, बिकॉज दे एंटिसिपेट सो मेनी थिंग्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली, दे एंटिसिपेट सो मेनी थिंग्स एंड एनालाइज सो मेनी थिंग्स दैट वी हैव टू सेल दिस मार्केट, बाय दिस मार्केट, बिकॉज दे आर द बिग प्लेयर्स नॉट ओनली इन इंडिया बट ग्लोबली. सो दैट्स वाई द पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स इज ऑलवेज डिफरेंट फॉर द डीआईआईज एंड एफआईआईज.
द प्री इलेक्शन रैली वी सॉ मिड कैप इंडेक्स गो अप सब्सटेंशियली, द प्राइस टू अर्निंग्स रेशियो क्रॉसिंग 40. And now experts are saying that the opportunities are there in the large caps and the small caps. And large caps, especially with the PE ratio at 20. But today we saw the mid cap index also pick up by 0.41%. The small cap index is going up. How do you see valuations in the mid cap space, where clearly it's being driven by the DIIs?
Yes, definitely, Arjun. As market fundamentals, as the theory, theoretically, if we go by the numbers from our theory, that the firstly large cap take the momentum, then the cats and dogs like the mid caps also follow. That is happening in the market. We have observed that large caps, blue chips, are moving ahead with large rally. Then the mid caps are also following the same trajectory.
डॉक्टर शर्मा, एक छोटी सी चीज, अगर आज के बाजार में देखा जाए, बैंकेक्स, टेलीकॉम सेक्टर और फाइनेंशियल सर्विसेज, इसमें कहीं दबाव नजर आया? क्या मानेंगे कि एक क्षणिक दौर था सिर्फ मुनाफा वसूली, या ये ऑलरेडी इतने ऊंचाई पर थे कि यहां पे मुनाफा वसूली बनती ही थी? देखिए, तीनों क्षेत्रों पे बहुत बड़ा दांव भी है और बहुत बड़ा भरोसा भी है.
देखिए, ये चर्निंग होता है. हम कभी एक सेक्टर में अगर कुछ सेलिंग आती है, वी कांट से कि उस सेक्टर का स्टोरी खत्म हो गया. Sometimes the investors shift their portfolios from one sector to the another. जब उनको लगता है कि इस सेक्टर में मैंने काफी अच्छा गेन कर लिया, अब उस सेक्टर में अच्छा ग्रोथ आ सकता है, देन दे शिफ्ट. बट उसका मतलब यह नहीं है कि एक सेक्टर का जो संपूर्ण उसका जो फंडामेंटल सिनेरियो था वो ओवर हो गया, अब वापस जो है हमें इसमें कुछ ग्रोथ नहीं मिलेगा। दे शिफ्ट देयर ऐसे विद इन द सेक्टर ऑल्सो दे शिफ्ट फ्रॉम वन शेयर टू दी अनदर शेयर। एक्चुअली कई बार वो ब्लू चिप में से निकल के स्मॉल कैप में जाते हैं, कई बार स्मॉल कैप से निकल के जब उनको अपना जो एक टारगेट है, जो इन्वेस्टमेंट टारगेट है पूरा हो जाता है, देन दे बुक देयर प्रॉफिट्स एंड शिफ्ट टू द अनदर शेयर।
आपके नजर में कौन से क्षेत्र अभी भी हैं जिसमें लिक्रेटिव बने हुए हैं या जहां पे अभी भी संभावनाएं अपार हैं?
देखिए मेरे 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 माइंड में जो मेरे सोच में एवरी सेक्टर इज प्रॉमिसिंग, एवरी सेक्टर इज लुक्रेटिव। दे हैव जस्ट स्टार्टेड देयर रैली, एक्चुअली दिस इज द बिगनिंग ऑफ द रैली इन द इंडियन मार्केट आई वुड से, बिकॉज वी हैव स्टार्टेड अवर स्टोरी नाउ। वी आर नाउ स्टार्टिंग ग्रोइंग एट अराउंड 8%, वी विल ग्रो मोर देन 8% इन द कमिंग टाइम्स ऑन द बैक ऑफ वेरियस रिफॉर्म्स अंडरटेकन ड्यूरिंग द लास्ट मेनी ईयर्स। सो मैं ये नहीं कहूंगा कि ये तो एक सेक्टर दो सेक्टर लुक्रेटिव है, मेरे लिए पूरा इंडिया का स्टोरी ही
मतलब लगातार निवेश करते हैं, लगातार थोड़ा निवेश करते हैं लंबी अवधि के लिए निवेश।
जी 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 जी।
डॉक्टर शर्मा, आई लाइक टू ब्रिंग योर नोटिस टू टेलीकॉम विच सॉ प्रॉफिट बुकिंग टुडे वेंट डाउन बाय 0.65%। इज इट बिकॉज ऑफ द टैरिफ इंक्रीज अक्रॉस द बोर्ड बाय कंपनीज बाय एज मच एज 15-20% स्पेशली ऑन प्रीपेड कनेक्शंस फॉर इंस्टेंस? डू यू सी दैट अफेक्टिंग द वॉल्यूम बिजनेस? And are they looking at, you know, the margins, basically, the average rent per user, how much they're earning per customer? Is that the telecom player's game right now?
Arjun, because this is the story of the fundamentals, actually, their micro-level developments, because I would like to not comment on their philosophy, how they are anticipating the numbers and their profitability and their price-cost margins. But definitely, because the rates, the tariffs are at around same level since the last many years, so that's why I think there is some shift or some restructuring of the tariff structure to move forward and to become more robust in the coming times.
What about banking? Do you see the net interest income go up or come down? Because we have news right now that the NPA has actually come down to 3% for the banks, which is a record in itself right now after the health conditions that we saw pre-pandemic. So how do you see the banking sector in terms of income?
Yes, yes, because I already mentioned that the balance sheets of the public institutions are very strong, actually. NPAs are coming down and their profitability, price cost margins are increasing. That's why the overall fundamentals like the banking sector or the public institutions, they are in the higher and higher trajectory and becoming more and more strong in today's scenario. So this is true that NPAs are coming down and the balance sheets of our banking system is becoming more and more strong.
मैं खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं, नजर डाल लेते हैं कुछ और खबरों पे। भारतीय रिजर्व बैंक ने दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के साथ मुद्रा अदला बदली व्यवस्था के लिए एक संशोधित रूपरेखा जारी की है। यह ढांचा वर्ष 2024 से वर्ष 2027 तक प्रभावी रहेगा। इस ढांचे के तहत नई रुपया स्वैप सुविधा शुरू की गई है जो भारतीय रुपये में आदान प्रदान का समर्थन करने के लिए विभिन्न रियायतें भी प्रदान करती है। इस सहायता के लिए कुल निर्धारित राशि 25,000 करोड़ रूपये है। सार्क मुद्रा स्वैप सुविधा 15 नवम्बर 2012 को परिचालन में आई थी, जिसका उद्देश्य दीर्घकालिक व्यवस्था स्थापित होने तक सार्क देशों में अल्पकालिक विदेशी मुद्रा आवश्यकताओं या भुगतान संतुलन संकट से बचने के लिए धन उपलब्ध कराना था। मुद्रा विनिमय सुविधा उन सार्क देशों के लिए उपलब्ध होगा जिनका रिजर्व बैंक के साथ द्विपक्षीय विनिमय समझौता होगा। मुद्रा विनिमय पूर्व निर्धारित नियमों और शर्तों के साथ मुद्राओं के आदान प्रदान के लिए एक समझौता या अनुबंध है। इस आदान प्रदान में कोई विनिमय दर या अन्य बाजार जोखिम नहीं होते क्योंकि लेन देन की शर्तें पहले से निर्धारित होती हैं। सार्क देशों के बारे में अगर बात करते हैं, क्योंकि भारत एक बढ़ती अर्थव्यवस्था के साथ साथ क्षेत्रीय तौर पर भी सबसे मजबूत अर्थव्यवस्था है, तो अगर सार्क देशों में उनको मुद्रा स्वैपिंग यानी कि रुपए के साथ साथ दूसरी मुद्राओं खासतौर पर डॉलर और जो यूरो है इसमें अगर स्वैपिंग की सुविधा मिलती है तो ये द्विपक्षीय व्यापार के साथ साथ जो हमारे पड़ोसी देश हैं सार्क देशों के संगठन के जो सदस्य देश हैं उनके लिए कितना बड़ा एक सुविधा उपलब्ध कराएगा?
जी बिल्कुल, बिकॉज सार्क कंट्रीज में मैं आपको बताना चाहूंगा कि ट्रेड तो बहुत ज्यादा फ्लोरिश नहीं हुआ, जिन देयर इंट्रा रीजनल ट्रेड इज वेरी मतलब मीगर, वहीं पे स्टेग्नेटेड है, लेकिन जो रिफॉर्म्स हैं रिफॉर्म्स प्रोसेस बहुत स्ट्रांग है। हमेशा हमने देखो स्टार्टिंग में हमने साफ्टा साइन किया, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, भारत में उसने पहल की और हमने ये समझौता किया और आगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो ट्रेड है वो उतना फ्लोरिश नहीं हो पाया, बट द अरेंजमेंट्स द रिफॉर्म्स आर ऑलवेज इंटैक्ट। और कुछ कंट्रीज जैसे कि बांग्लादेश और श्रीलंका, ये ट्रेड में काफी आगे अग्रसर हैं, काफी हमारा जो बायलेटरल ट्रेड है वो काफी स्ट्रांग है, नेपाल के साथ काफी स्ट्रांग है। तो गोइंग हेड आई थिंक दिस इज अ ग्रेट अरेंजमेंट, और इससे जो सार्क की जो एक स्ट्रांग छवि है जो इकोनॉमिकली पूरे वर्ल्ड में, वो और ज्यादा स्ट्रांग होगी एंड दे विल बी एबल टू सेट न्यू टर्म्स ऑफ ट्रेड टू मूव फॉरवर्ड।
नजर डाल लेते हैं एशियाई शेयर बाजार पर। एशियाई बाजारों में आज आमतौर पर मजबूती का दौर रहा। चीन का शंघाई कंपोजिट सूचकांक 0.7%, जापान का निक्के 0.6%, दक्षिण कोरिया का कोस्पी 0.5% की बढ़त से बंद हुआ। हांगकांग के हैंगसेंग में भी मामूली बढ़त दर्ज हुई, हालांकि सिंगापुर का स्ट्रेट टाइम सूचकांक 0.3% की गिरावट से नजर आया। उधर यूरोपीय बाजारों के शुरुआती रुझानों में भी तेजी का दौर रहा। लंदन और जर्मनी के शेयर सूचकांक लगभग 0.3% तक की मजबूती के साथ कारोबार करते नजर आए, जबकि फ्रांस के शेयर सूचकांक में मामूली गिरावट नजर आई।
वी सीइंग यूरोपियन मार्केट्स सीइंग सम करेक्शन ऑन अ रेगुलर बेसिस, इज दिस बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स?
डेफिनेटली दिस इज बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिक्स, बिकॉज after the coronavirus the expectations were that that Europe and America will stabilize and they will move forward and run the rally in the world market and drive the growth trajectory of the world economic system. But unfortunately immediately after the coronavirus the geopolitical developments are on rise. Firstly the Russia and Ukraine, thereafter Gaza and Israel, and tensions between Iran and Israel. So all these developments are impacting the all these developments are impacting the trajectory of growth in majorly in the advanced economies, because emerging markets are vulnerable to the developments in the advanced economies actually. Otherwise the resilience is there, that we have proved. India proved the resilience actually, despite so many headwinds and difficulties our growth remained intact.
Well, let's have a look at the U.S. market. Now, U.S. stock market extended again on Thursday as investors wait for fresh inflation data. NASDAQ climbed by 0.3%, while Dow Jones Industrial Average as well as the S&P 500 ended with 0.09% gain each. We're seeing record valuations in the U.S. stock market. NVIDIA is an example where they've crossed $3 trillion, even though there was a minor correction in terms of valuation, but they've become the most valuable company ahead of Apple and Microsoft. Why are we seeing such fresh valuations in the U.S. market despite some headwinds in terms of inflation?
Yes, because the growth is there, because growth trajectory is becoming strong comparatively in 22 or 23. Now 24 is, I think, comparatively good for the U.S. economy. But still they are facing the problem of last mile deceleration in inflation. That is the still a challenge for the U.S. economy, that inflation should come down so that they are able to reduce the Fed rate and to support the economy and to make it more and more strong, to become robust and to help the manufacturers and for the employment creation in the country.
How do you see U.S. Going forward after the steps they've taken against China to raise tariffs, create all kinds of barriers to trade like electric vehicles, and still we have a control over inflation? Because when they were buying, importing from China at a low price, then it helped in controlling inflation, in reducing their cost of borrowing. But the reverse is true right now. So how do you see them actually tackle inflation after taking on China in this manner?
I think the inflation trajectory is majorly because of the demand trajectory that is happening in the consumer demand, not for the durables but for the food products and the other utilities. That's why the inflation trajectory has become more and more strong. But the import impact, I think, is not helping them to reduce the inflation. They, if they import cheap rates, products at the cheap rate, that is not helping to reduce the inflation. Inflation will come down if the significant impact is there on the from the grassroots of the demand trajectory.
There is also the presidential election that is about to take place. Yes. Let's have a look at a headline story now on India's core sector. India's core sector grew by 6.3% in May 2024 as compared to the index in May 2023, according to the official data released today. Production of electricity, coal, steel, Natural gas and refinery products recorded positive growth in May. However, the growth of the 8 core sectors mildly slowed down on a month-on-month basis as the April growth was at 6.7%. The cumulative growth rate of 8 core industries during April to May was 6.5% as compared to the corresponding period of last year. The production of electricity, coal, steel, natural gas and refinery products recorded positive growth in May 2024, the Ministry of Commerce and Industry said in a statement. How do you take this news positively and what does this mean for the IIP figures which are to be released?
Yes, IIP numbers are also expected to become more strong as compared with the previous month.
Because of this weightage.
Because of this weightage. And I would say that because the rainy season is coming, that's why the producers in the such kind of core industries, they increase their production possibilities so that they are able to meet the demand in the futuristic months. So that is a great development. I think this will continue in the coming times because the focus of the government is on the infrastructure development because we have our target to become the Viksit Bharat by 2047. So the more focus on infrastructure, like the more and more allocations for the infrastructure development, for the capital investments, these are on the radar of the government. So that's why the infrastructure story will remain intact in the coming months and coming years and coming decades also.
लेकिन अप्रैल इसी वर्ष में अप्रैल के मुकाबले अगर मई के हम आंकड़े देखते हैं तो उसमें मामूली सी एक मंदी भी नजर आती है अगर हमारा जो 8 प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र हैं जिसमें अगर बिजली कोयला स्टील इन सब चीजों में बढ़त नजर आती है तो ये मतलब ये एक क्षणिक या तात्कालिक प्रभाव हो सकते हैं
देखिए सर उसमें क्या है कि क्या होता है कि हम हर एक मंथ में ये नहीं देख सकते कि हर एक मंथ एक से अगले मंथ से बढ़ गए ये एक एवरेज आउट के हमारा जो ग्रोथ है एक बेंचमार्क से ऊपर रहना चाहिए कि वी आर ग्रोइंग एक्चुअली उसमें एक छोटा नंबर मान लीजिए पहले 6.5% था और अभी 6% आया या 6.25% आया तो वो मायने नहीं रखता द स्टेडी ग्रोथ मोमेंटम मस्ट बी देयर सो दैट द एवरेज नंबर फॉर द होल ईयर बिकम्स रोबस्ट
जी Let's have a look at the crude oil market now. Oil prices climbed today amid concerns around demand from China and prospects of higher supply from key producers counter risks from geopolitical tensions. Brent crude was up by 0.36% to $86.70 per barrel. The US West Texas Intermediate crude rose up 0.35% to $82.03 per barrel when reports last came. And how concerned are you with the demand side picking up for crude oil? And what's the impact likely on global inflation?
I don't see any impact of the higher crude prices on economy or and these because these prices are not going to become strong or stable in the coming time. Crude is always volatile and I would say because the demand is decelerating and the global growth is anticipated at around 3%, so crude will not sustain at the higher levels but remain volatile. That is nature of the commodity. Actually.
नगर लाली ने सराफा बाजार पर मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में अगस्त के वायदा कारोबार में सोना 0.2% की मामूली बढ़त से 71,730 रुपए प्रति 10 ग्राम के स्तर पर दर्ज हुआ चांदी भी 1% की मजबूती से 87,892 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर दर्ज हुई वैश्विक बाजारों में सोना 0.3% की तेजी से $2,344.50 प्रति औंस के स्तर पर दर्ज हुआ चांदी भी 1.3% की बढ़त से $29.64 प्रति औंस के स्तर पर कारोबार करती नजर आई डॉक्टर शर्मा शायद सोने में ये जो चमक है और चांदी में दोनों में शायद होड़ लगी है कि कौन पहले 1,00,000 के स्तर को छूता है आपका क्या मानना है हालांकि
बिल्कुल दोनों
स्तर में देखें तो $30 से नीचे चांदी आई है
देखिए दोनों में बहुत जैसे आपने बताया बड़ी अच्छी होड़ है कि भी कौन आगे निकलेगा और उसके जो फेवरेबल फैक्टर है खास करके जो जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं ये बहुत ही फेवरेबल है इनके प्राइसेस के लिए बट एक जो चैलेंज है कि डॉलर का स्ट्रेंथ क्योंकि इन्फ्लेशन ट्राजेक्टरी अभी कम नहीं हो रही है जैसे इन्फ्लेशन डिसेलिरेट होगा तो इनकी चमक और भी बढ़ेगी आने वाले
डॉक्टर शर्मा कार्यक्रम में आने और चर्चा के लिए धन्यवाद
थैंक यू
और अब चलते चलते एक नजर आज की आर्थिक सुर्खियों पर एक बार फिर
Benchmark indices failed to hold its record high, ends in the red with Sensex down by 210 points while Nifty loses by 0.14%. India's core sector registers a growth by 6.3% in the month of May. Power, coal, steel, natural gas and refinery products showed positive growth. And at the multi-commodity exchange, gold and silver prices exhibit positive signs. And that's it in this edition of Market Mantra. For now, goodbye. We'll be right back.
बाज सरकार।